تفسیر سورۃ الشمس مکی سورت ہے، اس کا ایک رکوع، 15 آیات، الفاظ اور کلمات کی تعداد 54، جبکہ حروف 247 ہیں، 247۔ پہلے ہی لفظ کو اس سورت کا نام قرار دیا گیا، الشمس۔ اس کا موضوع اور مضمون نیکی اور بدی کا فرق سمجھانا ہے اور لوگوں کو برے انجام سے ڈرانا ہے۔ مضمون کے لحاظ سے یہ سورت دو حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ آیت نمبر 1 سے لے کر 10 پر ختم ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ سورۃ الشمس کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے کچھ چیزوں کی قسم کھائی ہے جو ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔ والشمس ودحاها، نمبر 1، قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے سب سے پہلے سورج کی قسم کھائی گئی، اور سورج جو ہے کائنات کی ایسی نشانی ہے کہ بچہ بھی اور بوڑھا بھی، شہری بھی اور دیہاتی بھی، چھوٹا بھی اور بڑا بھی، اگر اپنی آنکھوں کو کھول کر رکھے اور آسمان کی طرف نظر دوڑائے تو اس کو سورج جو ہے وہ اپنی پوری تابناکیوں کے ساتھ جو ہے وہ نظر آئے گا۔ فرمایا قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، اور دوحا کا لفظ یہاں پہ سورج کی روشنی اور اس کی حرارت دونوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اس کا روٹ ہے دواد، ہا، یا۔ اس کے معنی ہیں صبح، دھوپ۔ عربی زبان میں چاشت کے وقت کو دوحا کہا جاتا ہے، جب سورج طلوع ہونے کے بعد خاصا بلند ہو جاتا ہے۔ جب سورج چڑھتا ہے تو صرف روشنی ہی نہیں بلکہ گرمی بھی دیتا ہے، تو اسے دوحا کہا جاتا ہے۔ والشمس ودحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اگر یہاں پہ یہ کہیں نا کہ قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، تو پھر پورے معنی ادا نہیں ہوتے، کیونکہ روشنی تو صبح سے ہونے شروع ہو جاتی ہے نا جب سورج نکلتا ہے، لیکن جب وہ چڑھتا ہے تو روشنی کے ساتھ جب اس پہ دھوپ بھی ہوتی ہے تو پھر صحیح طور پر اس کے معنی جو ہیں وہ ادا ہوتے ہیں۔ تو قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی، یہ ہے قسم نمبر 1۔ نمبر 2، والقمری اذا تلاها، اور چاند کی قسم جبکہ وہ اس کے پیچھے آتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ سورج جاتا ہے تو اس کے بعد چاند آتا ہے۔ سورج دن کے وقت طلوع ہوتا ہے اور چاند جو ہے وہ رات کے وقت طلوع ہوتا ہے۔ رات کی آمد پر سورج چھپ جاتا ہے اور اس کی روشنی رات بھر غائب رہتی ہے۔ والقمری اذا تلاها، اور یہ لفظ بھی آپ پہلے بھی پڑھ چکی ہیں کہ تلا یتلو تلاوتن اور تلا یتلو تلون، اور یہاں پہ تلا یتلو تلون، اس کے معنی کیا ہیں کہ فالو کرنا، پیچھے پیچھے آنا۔ تو جب سورج چلا جاتا ہے تو اس کے پیچھے پیچھے جو ہے وہ چاند آتا ہے۔ तो और चांद की कसम जबकि वो उसके पीछे आता है, तो ये है दूसरी कसम। अब आप देखें कि सूरज और चांद जो हैं, सूरज दिन में आता है, चांद रात में आता है। सूरज की जो रोशनी है वो गर्मी वाली होती है, उसमें शिद्दत होती है, चांद की रोशनी जो है इसमें ठंडक पाई जाती है। तो ये दोनों जो हैं ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तीसरी कसम, वन नहारी इज़ा जल्लाहा वल्लैली इज़ा यग्शाहा, और दिन की कसम जबकि वो सूरज को नुमाया कर देता है, जीम लाम वो, ये इससे जलवा और इसी से नुमाया ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। और वन नहारी और दिन की कसम इज़ा जल्लाहा, जबकि वो उसको नुमाया कर देता है। इसके मानी हैं कि जब दिन होता है तो इसमें सूरज नुमाया होता है। दिन किसको नुमाया करता है? सूरज को नुमाया करता है। वल्लैली इज़ा यख्शाहा, ये चौथी कसम है, और रात की कसम जबकि वो सूरज को ढांप देती है, गशी, ये पहले भी आप पढ़ती हैं ना, गैन शीन या सूरत गाशिया भी आपने पढ़ा है, छुपाना ढांप देना, और रात की कसम जबकि वो सूरज को छुपा दे। और आप याद रखें कि सूरज और चांद अरबी जबान में दोनों मुअन्नस हैं, आसमान और ज़मीन भी मुअन्नस हैं, सूरज और चांद भी, इसलिए यहाँ पे हा हा की ज़मीर आ रही है। वल्लैली इज़ा यख्शाहा, और रात की कसम जबकि वो सूरज को ढांप लेती है। तो दिन दिन जो है वो रोशन होता है, रात तारीख होती है, हुए ना एक दूसरे के ऑपोजिट। फिर उसके बाद आयत नंबर 5 में, वस्समाई वमा बनाहा, और आसमान की और उस ज़ात की कसम जिसने उसे बनाया, उसे कायम किया। बनाहा जो है बानून या, और इसी से बुनियान इमारत के लिए भी इस्तेमाल होता है। सूरह सफ़ में आपने पढ़ा था बुनियान मरसूस, और बनाहा आसमान की और ज़ात की कसम जिसने इसको बनाया, इसको कायम किया। आयत नंबर 6, वल अर्दी वमा तोहाहा, और ज़मीन की कसम और उस ज़ात की कसम जिसने इसे बिछाया। अब आप देखें कि यहाँ पे तोहाहा का लफ्ज़ अहम है। इसके मानी क्या हैं? इसके मानी हैं फैलाना, मुफस्सरीन कहते हैं इसका रूट है त्वा हा वाओ, बिछाना फैलाना। तो अल्लाह ताला ने ज़मीन को बिछा दिया, सिर्फ बनाया ही नहीं बल्कि आप देखें कि ज़मीन जो है उसको बिछा दिया गया है। कितनी आसानी के साथ हम ज़मीन पर जो है वो काम काज करते हैं और जो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं पूरी करते हैं। ज़मीन जो है हमें भी और जानवरों को भी खाना देती है, हमारे लिए भी, जानवरों के लिए भी, हशरातुल अर्द के लिए भी, सब के लिए जो है वो बेहतरीन जो है वो अल्लाह ताला का जो है वो इंतज़ाम है। तो आसमान बुलंदी पर है और ज़मीन पस्ती पर है। तो आसमान को कायम करने वाला कौन है? अल्लाह ताला। और ज़मीन को बिछाने वाला भी कौन है? अल्लाह ताला। तो ये है छठी कसम। तो कसम नंबर 5 आसमान की, नंबर 6 ज़मीन की और उसको बिछाने की, और सातवीं कसम जो है वह नफ्सिम वमा सवाहा। ये जो 6 चीज़ों की कसम खाई है ना, ये कसम खाई है दरअसल, ये जो 7 नंबर कसम है जो आयत नंबर 7 में आई है, इसके लिए ये कसम खाई गई है। वह नफ्सिम वमा सवाहा, और नफ्से इंसानी की और उस जात की कसम जिसने इसको हमवार किया। हमवार करने के माने क्या हैं कि जिसने इसको हमवार किया, इसके माने ये हैं कि बराबर बनाया इंसान को। आप देखें कि इंसान के जिस्म के अज़ा हैं, उसका कद है, उसके देखने सुनने छूने चखने और सूंघने के जो अज़ा हैं, इनके अंदर एक तनासुब पाया जाता है, एक खसूसियत है। बड़ा ही जो है वो अल्लाह ताला ने इंसान को बेहतरीन जो है वो जिस्म अता किया है। तो इंसानी जान और उसको दुरुस्त और मुतनासिब बनाने की जो कसम यहाँ पे खाई गई है, और तस्विया, तस्विया का मतलब होता है दुरुस्त और बराबर। तो सात कसमों के ये जो सातवीं कसम है ना, दरअसल ये है जो कि पैगाम यहाँ पे दिया जा रहा है कि इंसान को अल्लाह ताला ने जो है वो बहुत ही अच्छा पैदा किया है, ज़ाहरी तौर पर भी बातनी तौर पे भी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो फितरत के सिवा किसी और चीज़ पर पैदा हो, फिर इसके माँ बाप उसे यहूदी या नसरानी या मजूसी बना देते हैं। ये ऐसा ही है जैसे जानवर के पेट से पूरा का पूरा सही सालिम बच्चा पैदा होता है। क्या तुम इनमें से किसी का कान कटा हुआ पाते हो? इसे बुखारी ने रवायत किया है। एक और हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा रब फरमाता है कि मैंने अपने तमाम बंदों को हनीफ पैदा किया था सही फितरत पर, फिर शयातीन ने आकर इनको इनके दीन से गुमराह कर दिया और इन पर वो चीज़ें हराम कर दी जो मैंने इनके लिए हलाल की थी, और इनको हुक्म दिया कि मेरे साथ उनको शरीक करें जिनके शरीक होने पर मैंने कोई दलील नाजिल नहीं की। इसे मुस्नद अहमद ने रवायत किया है और सही मुस्लिम में भी इससे मिलते जुलते अल्फाज जो हैं वो मिलते हैं। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने जो है वो नफ्से इंसानी की कसम खाई है। कि इंसान जिसको शक्ल सूरत हर लिहाज से खूबसूरत बनाया, आयत नंबर 8, फअलहमहा फुजूरहा वतक्वाहा, फिर उसकी बदी और उसकी परहेजगारी उस पर इल्हाम कर दी। इल्हाम का रूट है लाम हा मीम, इसके मानी निगलने के हैं। फलां शख्स ने फलां चीज़ को निगल लिया, मैंने फलां चीज़ उसको निगलवा दी, उसके हलक से उतरवा दी, इस तरह ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। कहा कि फिर उसको इल्हाम कर दी, फुजूरहा उसकी बदी, व तक्वाहा और उसकी परहेजगारी। अब यहाँ पे अल्लाह ताला बता रहे हैं कि इंसान को जब से ही अज़ा वाला बनाया, बेढब और बेढंगा नहीं बनाया, फिर उसको बता दिया, उसको अच्छी तरह समझा दिया कि नेकी क्या है और बदी क्या है, खैर क्या है और शर क्या है। उसकी फितरत के अंदर जो है ना नेकी और बदी रख दी। अच्छा, फिर आप देखें कि फजूरहा व तकवाहा, यहाँ पे फजूर का ऑपोजिट है तकवा। फिर आयत नंबर 9, कद अफलह मन जक्काहा व कद ख्वाब मन दस्साहा, यकीनन फलाह पा गया वो शख्स जिसने नफ्स का तस्किया किया और नाकाम हुआ वो शख्स जिसने उसको दबा दिया। अफलाहा जो है ये कामयाबी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कामयाब और ऐसी कामयाबी जो बड़ी मेहनत मशक्क़त के बाद जो है वो मिलती है। और ज़क्काहा, ज़ा काफ़ वो, ज़ा काफ़ या, इसके दो रूट हैं और इसके मानी हैं कि अपना तस्किया करना। बातनी पाकी को भी कहते हैं कि जो बुरे जज्बात हैं उन्हें दबाया जाए और जो अच्छे जज्बात हैं उनको उभारा जाए। तस्किया के मानी है अल्लाह की अतात करके अपने जाहिर और बातिन को पाक करना। तस्किया के मानी है पाक करना, उभारना और नशोनुमा देना। तो जो बुरे जज्बात हैं उनसे अपने आप को पाक करना है और जो तकवा के जज्बात हैं उन्हें उभारना है, उनको बुलंदी पे ले जाना है, भलाई को, नेकी को नशोनुमा देनी है। यहाँ पे दस्साहा का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, दस्साहा। इसका रूट है दाल सीन सीन, और इसके मानी हैं गाड़ना। दबाना, छुपाना, इगवा करना, गुमराह करना। अब यहां पे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि कामयाब हो गया वो नफ्स जिसने अपने नेक जज्बात को उभारा, उसको पाक किया, उनको नशोनुमा दी, और जो बुरे जज्बात हैं जिसने उसको दबा दिया वो नामुराद हुआ। तो क्या करना चाहिए? कि यहाँ पे और नामुराद हुआ वो जिसने उसको दबा दिया, तो किस चीज़ को दबाना है? यानी बुरे जज्बात को तो दबाना ही है, लेकिन नफ्स के अंदर जो नेकी के जज्बात पाए जाते हैं ना, उनको नहीं दबाना। तो वो नफ्स जो है वो फला पाएगा जिसको अल्लाह ने पाक कर दिया, जो खुद नेकी की तरफ जाता है, और वो शख्स तबाह व बर्बाद हो गया जो कि बुराई की तरफ जाता है। मुफस्सरीन कहते हैं कि दरअसल यहाँ पे शिर्क, मासियत, इखलाकी जो बुराइयाँ और अलाइशें पाई जाती हैं उनसे अपना तज़किया करने की दावत दी जा रही है। तो वो शख्स जो अपने नफ्स को छुपा देता है, बेकार छोड़ देता है, उसे अल्लाह की अतात और अमले सवाले के लिए नशोनुमा नहीं करता, तो वो शख्स जो है वो नाकाम हो जाएगा, तबाह बर्बाद हो जाएगा। हमें रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस भी मिलती हैं, दुआएं भी मिलती हैं। खुद रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत का ये मतलब बयान किया, अफलहत नफ्सुन ज़क्का अल्लाहु अज़्ज़ा वजल, फलाह पा गया वो नफ्स जिसको अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने पाक कर दिया। फिर इसी तरह रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ बड़ी कसरत से मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा आती नफ्सी तक्वाहा वज़क्कीहा अंत खैरु मन ज़क्काहा अंत वलीयुहा व मौलाहा। तो हमें जो है तकवा और तज़किए की जो ख्वाहिश है ये हमारे अंदर होनी चाहिए, उसकी तलब करनी चाहिए, और ये उन्हीं को ये मिलेगी जो कि इसकी तलब रखेंगे। और ये जो यहाँ पे दस्साहा या तदसिया है, इसके मानिए कि अल्लाह किसी के नफ्स को दबाता नहीं है जब तक कि खुद जो है वो बंदा अपने नेकी के जज्बात को दबा ना दे। अल्लाह उसी को तकवा और तज़किए की तौफीक से महरूम करता है जो अपने आप को नेकी से महरूम करता है। जब वो अपने नफ्स को गंदगी के ढेर में दबाना चाहता है तो फिर अल्लाह भी उसको गंदगी के ढेर में दबा देता है, फिर वो बुराइयों की तरफ बढ़ता चला जाता है। तो प्यारी बहनों, ये जो 6 कस्में खाई गई हैं और उसके बाद 7वीं आयत में जो 7वीं कसम है, ये है असल पैगाम कि हमें अपने नफ्स का तज़किया करना चाहिए, हमें अपने आप को बातनी तौर पर, हमें अपने आप को ज़ाहरी और बातनी तौर पर पाक करना चाहिए। तो आयत नंबर 1 से लेकर 10 तक पहला हिस्सा मुकम्मल होता है, और अल्लाह ताला बता रहे हैं कि सूरज चांद से, दिन रात से, ज़मीन आसमान से ये मुख्तलिफ हैं। बिल्कुल इसी तरह जो है इंसान का जो नफ्स है अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। इसी तरह नेकी और बदी के दो रास्ते हो सकते हैं। तो जिस तरह सूरज की रोशनी और चांद की रोशनी में फर्क पाया जाता है, उनके असार और नताइज फर्क हैं दिन और रात के, सूरज और चांद के, जमीन और आसमान के, बिल्कुल इसी तरह नेकी और बदी के असार और नताइज भी मुख्तलिफ हैं। ना इनकी शक्लें एक जैसी हैं, ना इनके नताइज एक जैसे हैं। तो इंसानी जिस्म जो है, जो अल्लाह ताला ने इंसान को दिया है, तो अल्लाह ताला ने जब इंसान को नेकी और बदी की तमीज़ दी है, तो अल्लाह ताला ज़रूर पूछेगा कि तुमने दुनिया की ज़िंदगी किन कामों में सरफ की, तुमने अल्लाह की दी हुई कुव्वतों और सलाहियतों का इस्तेमाल करके अपने नफ्स के अच्छे और बुरे रुझानात में से किसको उभारा और किसको दबाया। अगर अच्छे रुझानात को उभारा, नेकी के जज्बात को उभारा और बुराई के जज्बात को अपने नफ्स से पाक करके, बुराई के जज्बात को ज़मीन में दबा दिया, तो तुम फलाह पा जाओगे। तो ये है पहला हिस्सा। दूसरे हिस्से में कौम समूद की मिसाल दी गई है कि उन्होंने रसूल को झुठलाया था और फिर वो कैसी सरकश कौम थी और कैसा उनका अंजाम हुआ। आयत नंबर 11 से लेकर आयत नंबर 15 तक। कज़्ज़बत समूद बि तग़वाहा इज़ बअसा अशक़ाहा فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا فَكَذَّبُوهُ فَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا۔ سمود نے اپنی سرکشی کی بنا پر جھٹلایا، تو وجہ یہ نہیں تھی کہ رسول کی دعوت میں کوئی کمی تھی، بلکہ ان کے جھٹلانے کی وجہ उनकी सरकशी थी। वो बुराइयों को छोड़ने को तैयार नहीं थे और तकवा कबूल करना उन्हें गवारा नहीं था। इज़िम बासा अशक़ाहा, वा एन सा इसका रूट है। इज़िम बासा जब उठ खड़ा हुआ, अशक़ाहा उनमें सबसे बदबख्त इंसान। तो अशक़ाहा जो है, ये लफ्ज़ आप पहले भी पढ़ चुकी हैं, इसका रूट है शीन, काफ, वाओ और शीन काफ या। और इसके मानी हैं बुरा, बेनसीब, बदबख्ती, इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब उस कौम का सबसे बुरा, सबसे बदबख्त शख्स जो है वो उठ खड़ा हुआ, वो भिपर कर उठा था। वो क्या करना चाहता था? वो अल्लाह के रसूल की जो ऊँटनी थी, जो मौजज़ा था नाकतुल्लाह, वो उसको मारना चाहता था। फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाह नाकतल्लाह वसुक़ियाहा, तो अल्लाह के रसूल ने उन लोगों से कहा, नाकतल्लाह, ये अल्लाह की ऊँटनी है, इसको हाथ ना लगाना, इसको ना मारना। वसुक़ियाहा, और ये है उसके पानी पीने की जो है वो जगह। तो आपको पता ही है ये बात कि ऊँटनी जो थी वो मौजज़े के तौर पर इन्हें दी गई थी और उन्हें कहा गया था कि अल्लाह की ऊँटनी है, ये ज़मीन में जहाँ चरेगी इसको चरने देना। एक दिन सारा पानी इसके लिए मखसूस होगा, दूसरा दिन जो है वो तुम्हारे लिए और तुम्हारे जानवरों के लिए। अगर तुमने इस ऊँटनी को हाथ लगाया तो याद रखना, तुम पर अल्लाह का सख्त अजाब नाजिल हो जाएगा। कुछ मुद्दत तक तो वो डरते रहे, फिर इनमें जो सबसे ज़्यादा शरीर और सरकश शख्स था वो उठा ताकि इस ऊँटनी को जो है वो तबाहो बर्बाद कर दे। सूरत अल आराफ आयत 73, सूरत अश्शूरा आयत 154 से 156 और सूरत अल कमर आयत 29। आप इसको भी सामने रखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये मज़मून कुरान में पहले भी आया है। बुखारी की हदीस है, अब्दुल्ला बिन ज़ोमा फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खुतबे में सवाले पैगंबर की ऊँटनी और उस शख्स का जिक्र किया जिसने इस ऊँटनी को जख्मी किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बदबख्त इस काम के लिए तैयार हुआ वो एक जरी, शरीर और मजबूत शख्स किदार बिन सालिफ था, जो अपनी कौम में अबू जमा की तरह था। अबू जमा कौन था? ये अहले मक्का में से था। तो ये शख्स जो कि उठा और ऊँटनी को उसने ज़ख्मी किया, इसका नाम था किदार, काफ दाल अलिफ रा बिन सालिफ, सीन अलिफ लाम फा। तो ऊँटनी जो थी इसने मार दी, उसको ज़ख्मी कर दिया। तो अब यहाँ पे यही बात बताई जा रही है कि पैगंबर ने उनको समझाया था कि यह है अल्लाह की ऊँटनी, इसको हाथ ना लगाना, बस उकियाहा और इसके पानी पीने में माने ना होना। फकद्दबूहू, मगर उन्होंने उसकी बात को झूठ करार दिया। फ़अकरूहा, और ऊँटनी को मार डाला। ऐन काफ रा, ऐन काफ रा का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है टांगे काटने के लिए, कोंचे काटना। तो उन्होंने ऊँटनी की कोंचे काट दी। किदार बिन सालिफ ने, जो कि रईसुल अशकिया था, हालांकि पैगंबर ने उनको समझाया भी था कि ऊँटनी को छेड़ना नहीं है और इसके पानी पीने का जो दिन है इसमें गड़बड़ ना करना। फकज़्ज़बूहू, तो उन्होंने पैगंबर की बात को झुटलाया। फाका रूहा, और ऊँटनी को मार डाला, उसकी टांगे उसकी कोंचे काट डाली। और जब ज़ायरा की टांग काटी जाएगी नीचे से, तो फिर वो उसका खून बहेगा तो मर जाएगी ना। फदम दमा अलैहिम रब्बहुम बिज़म्बिहिम फसव्वाहा, फदम दमा अलैहिम रब्बहुम बिज़म्बिहिम फसव्वाहा वला यखाफु उक्बाहा। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे दमदमा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है और इसके मानी हैं तबाह करना। दमदमा ऐसे सख्त अजाब को कहते हैं जो किसी शख्स या कौम पर बार बार आता है, यहाँ तक कि उनको तबाह बर्बाद करके रख देता है। और इस अजाब में तकरार पाई जाती है, जैसे जलजला, दमदमा। तो ये अजाब जो था वो इन पर मुसल्लत हो गया, इनको हिलाक करके रख दिया। आपने सूरत अल-फजर में पढ़ा ना, फसब्बा अलैहिम रब्बुका सौता अजाब, कि तेरे अल्लाह ने अजाब के कोड़े इन पर बरसा दिए। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि तेरे रब ने ऐसा अजाब इन पर नाजिल किया जो कि इनके लिए मौजू था। और सूरत अल-कमर में आयत 37 में आप पढ़ चुकी हैं कि सर्दी के बादल और उसमें ओले, हौलनाक कड़क, चमक, तूफ़ानी हवा, ये सब कुछ इनके इन पर भेजे जाने वाले अजाब में शामिल थी। फदमदमा अलैहिम रब्बहुम, आखिरकार तेरे रब ने उन पर जो है वो ऐसी तबाह कुन जो है वो सजा भेजी, अजाब भेजा। बिज़म्बिहिम, इनके गुनाहों की वजह से, ऐसी ज़्यादती नहीं की, इनके गुनाहों की वजह से। फसव्वाहा, और फिर इन सबको बराबर कर दिया। बराबर करने के मानी सबको हिलाक कर दिया। आमतौर पर ऐसा होता है ना कि लोग उठते हैं, चलते फिरते हैं, काम काज करते हैं, लेकिन सब ज़मीन पर लेटे हुए थे, सब ख़त्म थे, उनके अंदर ज़िंदगी की रमक भी बाकी ना थी। फसव्वाहा, सुथरा, साफ करके रख दिया। वहाँ पे ना कोई घर थे, ना कोई महल्ला थे, और ना ही कोई जो है वो ज़िंदगी गुजारने वाले आबाद लोग थे। सबको, जो अमीर थे, गरीब थे, छोटे थे, बड़े थे, सबको अल्लाह ने ज़मीन पर बराबर कर दिया, तह खाक कर दिया। वला यखाफ उक्बाहा, और अपने इस काम पर अल्लाह ताला को किसी बुरे नतीजे का खौफ नहीं है, वो नहीं डरता इसके तबाह कुन अंजाम से। अल्लाह को ये डर नहीं है कि अल्लाह ने जब ये सजा दी तो कोई बड़ी ताकत इसका इससे बदला लेगी। तो कहा कि अल्लाह तो खुद इंतकाम लेने वाला है, तो अल्लाह ताला ने जो कुछ भी किया, अल्लाह ताला को जो है वो इस बात का कोई डर और खौफ नहीं है। तो प्यारी बहनों, ये थी सूरत अश-शम्स। सूरत अश-शम्स जो है हमें क्या पैगाम देती है? इसमें सबसे पहले नेकी और बदी का फ़र्क समझाया गया है। जैसे नेकी क्या है, जैसे कि दिन रोशन होता है, बदी क्या है, जैसे कि रात तारीक होती है। बिल्कुल ऑपोजिट चीज़ें हैं ना। नेकी क्या है, जैसे कि बुलंदियां हैं, आसमान है। बदी क्या है, जैसे कि ज़मीन और उसकी पस्तियां हैं। तो सूरत के आगाज़ में छः आयतों में अल्लाह ताला ने छः चीज़ों की कसम खाई है और बताया कि ये तमाम चीज़ें जो हैं ये अपने आसार और नताइज में एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, ना अपनी शक्ल में एक जैसी हैं, ना अपने नताइज में। बिल्कुल इसी तरह नेकी और बदी भी एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। और ये नेकी और बदी की पहचान अल्लाह ताला ने इंसान के नफ्स के अंदर रखी है, इंसान के ज़मीर के अंदर रखी है। और फरिश्तों को भेजा, जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा, अम्बिया के पास किताबें आईं और इंसान जो है उनको बताया कि गलत क्या है और सही क्या है, तमीज़ दी। और हमारे पास कुरान मजीद, तो करना क्या चाहिए कि अपने नफ्स का तज़किया करना चाहिए, रसूल की पैरवी करनी चाहिए और फलाह जो है वो पानी चाहिए। और फलाह जो है वो ऐसे ही नहीं मिलेगी, फलाह पाने के लिए ज़रूरी है कि अच्छी जो अकायद हैं उनको इख्तियार किया जाए, अच्छे इखलाक और आमाल जो हैं उनको अपनाया जाए, तकवा को अपनाया जाए, और फजूर जो बद किरदारी है, जो बुरा अकीदा है, बुरे मैलानात और ख्वाहिशात हैं उनसे परहेज़ किया जाए। इन्ना हदीना हुस्सबीला इम्मा शाकिरं व इम्मा कफूरा। सूरत दहर में आप पढ़ चुकी हैं, सूरत आपने पीछे ही सूरत बलद में पढ़ा है। वहदीना हुन्नजदैन। तो नेकी और बदी की तमीज़ तो दे दी गई, अब जो है फ़ैसला मेरे और आपके हाथ में है कि हम क्या करते हैं। आइए नेकी के रास्ते को इख्तियार करें। और अब्दुल्ला बिन ज़ामा जो कौम समूद थी, जो सवाले अलैहिस्सलाम की कौम थी, उन्होंने पैगंबर का इनकार किया। बहुत चंद लोग थे जो ईमान लाए थे। सवाले अलैहिस्सलाम ने एक तवील अरसा लोगों को जो है वो अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाया था, लेकिन अफसोस कि उन्होंने अपना तज़किया ना किया, उन्होंने शिर्क को ना छोड़ा, उन्होंने रसूल की बात ना मानी, उन्होंने रसूल के जो पैगाम था उसको झुठलाया। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो कौम अपने रसूल को झुठलाती है, जो कौम अपने पैगंबर का इनकार करती है और अल्लाह के मौजज़ात और निशानियों को झुठलाती है, जैसे कि उन्होंने नाका को झुठलाया, तो उन पर अल्लाह का अज़ाब जो है वो आकर रहता है। हमारे लिए मौजज़ा क्या है? कुरान मजीद मौजज़ा है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्वा और किरदार जो है वो मौजज़ा है। तो आइए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान मजीद की रोशनी में अपनी ज़िंदगी का सफ़र तय करें। अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। अल्लाह ताला मुझे और आपको हुस्ने अमल करने वाला बनाए। और हम अल्लाह ताला से ये दुआ मांगते हैं, अल्लाहुम्मा आती नफ्सी तक्वाहा व ज़क्कीहा व अंत खैरु मन ज़क्काहा अंत वलीयुहा व मौलाहा। अल्लाह मेरे नफ्स को इसका तकवा दे दे, उसे पाक कर दे, तुझसे बढ़कर कोई इसे पाक नहीं कर सकता, तू ही इसका कारसाज और मौला है। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।